नमस्कार भारत, तारीख 30 मार्च, दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के साथ ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से विदा होने की हुई औपचारिक शुरुआत, यूरोपीय कमीशन ने दिया जवाब।
The response to the letter will be published by the end of April. We will have a European Council.
लोकसभा ने जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को किया पारित।
पहला कानून है सेंट्रल जीएसटी लॉ। अब सेंट्रल जीएसटी लॉ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इंटीग्रेट कर देता है।
क्यों फट जाता है अटारी सीमा पर लगा भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज? दुनिया जहान में ओबामा केयर बनाम ट्रंप केयर की कहानी, खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के हस्ताक्षर के साथ ही ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से विदा होने की औपचारिक शुरुआत हो गई है। लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के तहत ब्रिटेन की तरफ से आधिकारिक रूप से यूरोपियन काउंसिल को नोटिस दे दिया गया है। अमेरिका के गृह सचिव रायन जिंक ने स्वीकार किया है कि अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना में बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की बड़ी और खूबसूरत दीवार को बनाने के काम को भौगोलिक चुनौतियां मुश्किल बना देंगी। इससे पहले जिंक ने कहा था कि अमरीका रियो ग्रांडे नदी के अमरीकी तट पर दीवार बनाकर इसे मेक्सिको को नहीं लेने देगा और दीवार इस नदी के बीचों बीच से होते हुए बनाई जाएगी। मध्य पूर्व के लिए काम कर रहे अमरीकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि इराकी शहर मूसल पर गठबंधन सेना के हवाई हमलों की औपचारिक जांच की जाएगी। बताया गया था कि इस हमले में 200 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई थी। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल जोसेफ वोटेल ने सशस्त्र सेवाओं की समिति को बताया कि जांचकर्ता 17 मार्च को हुए इस विस्फोट के तथ्यों की पड़ताल करेंगे और तय करेंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा,
The investigation will look at command and control. We'll look at the munitions we employed and the fusing.
इस जांच में कमांड एंड कंट्रोल की पड़ताल की जाएगी। हम देखेंगे कि किस तरह के असले का इस्तेमाल हुआ था और विस्फोट कैसे हुआ। साथ ही हम खुफिया जानकारी की भी जांच करेंगे। हम दुश्मन के व्यवहार और अपने खुद के कामों की भी पड़ताल करेंगे ताकि हम जान सकें कि किस तरह हमारी हरकतों के कारण नागरिकों की मौत हो सकती है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल जोसेफ पोटल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक में अधिकारियों का कहना है कि देश की राजधानी बगदाद में एक आत्मघाती ट्रक हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमले में लगभग 45 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। गाड़ी को एक पुलिस चेक नाके के पास उड़ा दिया गया था। फिलहाल किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इराक में कई जगहों पर चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने इस तरह के हमलों को अंजाम दिया है। कोलंबिया के एक अरबपति वास्तुकार को एक 7 वर्षीय लड़की यूलियाना सांबोनी के अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए करीब 52 वर्ष की सजा सुनाई गई है। बीते दिसंबर कोलंबिया की मूल निवासी यूलियाना की मौत के बाद राजधानी बोगोटा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस साल जनवरी में 38 साल के राफेल उरीबे नोगुएरा ने अपना जुर्म कबूल किया। यूलियाना के पिता जुवेंसियो सांबोनी ने कहा कि वो चाहते थे कि राफेल उरीबे को 60 साल की अधिकतम सजा मिले। एक पिता के तौर पर मुझे निराशा हुई है, क्योंकि मैं चाहता था कि न्याय मिले। मैं चाहता था कि इस अपराधी को 60 साल की सजा मिले। मैं देश की न्याय व्यवस्था से निराश हुआ हूँ। ये थे यूलियाना सांबोनी के पिता जुवेंसियो सांबोनी। जॉर्डन में मुलाकात कर रहे अरब नेताओं ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी प्रदेश के बनाए जाने को एक बार फिर समर्थन दिया है। इन नेताओं की मांग है कि इसराइल अरब देशों की उन जमीनों से हटे जिन पर उन्होंने 1967 को कब्जा किया हुआ है। इन नेताओं का कहना है कि इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए पहले ऐसा करना जरूरी है। इससे महीने भर पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इसराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए एक या दो राष्ट्र समाधान के पक्ष में हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है कि सीरिया में जारी उनके देश का सैन्य अभियान खत्म हो गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत अभिनंदन। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। तो आखिरकार ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से जुदा होने यानी कि ब्रेक्सिट की औपचारिक शुरुआत हो गई है। ब्रिटेन ने लिस्बन संधि में अनुच्छेद 50 के तहत यूरोपियन काउंसिल को नोटिस दे दिया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री टेरिजा मे के हस्ताक्षर वाला पत्र यूरोपीय संघ को सौंप दिया गया है। क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से पूरा घटना चक्र घूमा, बीबीसी संवाददाताओं के भेजिए ब्यूरो के साथ हैं मानसी दाश।
ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की खबरें बीते कई महीनों से चर्चा में रही हैं। बीते साल इस विषय पर जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें 50% से अधिक लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के फैसले पर मुहर लगाई थी। इसके तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को इस्तीफा देना पड़ा था और टेरिजा मे नई प्रधानमंत्री बनी थी। अब ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए यूरोपीय काउंसिल को नोटिस दे दिया है। टेरिजा मे के हस्ताक्षर वाला पत्र यूरोपीय यूनियन को सौंप दिया गया है और ब्रिटेन के ईयू से विदा होने की शुरुआत हो गई है। टेरिजा मे के पत्र के जवाब में यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जॉन क्लाउड यूंकर ने कहा, इस पत्र का जवाब अप्रैल के आखिर में दिया जाएगा। 29 अप्रैल को यूरोपीय काउंसिल की बैठक होगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे पहले मैं जितना हो सके खामोश रहूँ। इस मामले पर निजी राय पूछे जाने पर जॉन क्लाउड यूंकर ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है। टेरिजा मे के पत्र के यूरोपीय यूनियन को सौंपे जाने के बाद कई देशों ने ब्रिटेन में रह रहे अपने नागरिकों के लिए चिंता जताई है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष अंटोनियो तजानी ने कहा कि यूरोपीय और ब्रिटानी नागरिकों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। यूरोपीय संसद को अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करनी होगी। इसके लिए हमें निरंतरता, पारस्परिकता और गैर पक्षपात को आधार बनाते हुए एक समझौते की जरूरत है। अगर नागरिकों के हकों पर हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब होगा कि हम समझौते तक पहुंच ही नहीं पाए। साथ ही ब्रिटेन को अपनी आर्थिक प्रतिबद्धताओं का भी सम्मान करना होगा। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष एंटोनियो तजानी। इधर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने बीबीसी को बताया कि यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद भी ब्रिटेन को इसके साथ होने वाले व्यापार का फायदा मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि वो एक मुक्त व्यापार समझौता चाहती हैं, जिससे ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार में व्यापार करने की सहूलियत हो। देश की गृह मंत्री एम्बर रुड ने कहा, इस बारे में बातचीत शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है कि उनके लिए मुख्य मुद्दा यह है कि हमें विश्वास है कि हम यूरोपीय संघ के साथ एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जिससे उन्हें और हमें दोनों को फायदा होगा। हम उन संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं जहां हम दोनों पक्षों को लाभ होगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री एम्बर रुड। अब 31 मार्च को यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित करेंगे, जिसके बाद यूरोपीय काउंसिल ब्रिटेन को औपचारिक तौर पर उत्तर देगा। इसके बाद आमने सामने बातचीत शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि साल 2019 में इस वार्ता पर विराम लग जाएगा और ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा।
तो जैसा कि आपने सुना, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के साथ ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से विदा होने की औपचारिक शुरुआत हो गई है। ब्रेक्सिट के पूरे घटनाक्रम को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31, 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7295, 9915, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा ने जीएसटी से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विधेयकों को कल पारित कर दिया। कल हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला दिन था। इसी दिन को इस खास बिल के लिए चुना गया था। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल पेश किया। दिन भर बहस करने के बाद देर शाम इसे पारित कर दिया गया। जीएसटी को लागू करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब सरकार पहले से निर्धारित जुलाई से इस कानून को देश भर में लागू करा पाएगी। एक रिपोर्ट सुनिए निखिल रंजन से।
भारत में संसद के निचले सदन लोकसभा में बुधवार को जीएसटी बिल से जुड़े 5 कानूनों को मंजूरी मिल गई। ये वो कानून हैं जिनकी जरूरत जीएसटी बिल को लागू करने के लिए थी। इनमें टैक्स की दरों से लेकर राज्य सरकारों को जीएसटी कानून लागू होने पर नुकसान की भरपाई तक के मामलों से जुड़े कानून शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली।
पहला कानून है सेंट्रल जीएसटी लॉ। अब सेंट्रल जीएसटी लॉ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इंटीग्रेट कर देता है। वो टैक्स कितना लगेगा ये काउंसिल तय करेगी, और उस टैक्स को इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करना और उसकी जो संचालन की सारी व्यवस्था सीजीएसटी लॉ के अंदर है। इसका दूसरा कानून है एसजीएसटी लॉ, जो केंद्र के सामने नहीं आएगा, जो 31 विधानसभाओं के सामने जाएगा, जो सेंट्रल लॉ का एक प्रकार से मिरर इमेज है कि हर राज्य में जो स्टेट जीएसटी है वो किस प्रकार से लगेगा। तीसरा कानून है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इंपोर्ट्स के संबंध में या एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके संबंध में जो इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर टैक्स लगता है जो उसका संचालन करेगा। पहले 5 वर्ष तक अगर किसी राज्य को भी इसमें घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति की जाएगी।
केंद्र सरकार ने आजादी के बाद से कर सुधारों के लिहाज से इस कानून को कर ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव कहा है। केंद्र सरकार ने इस कानून को पास करवाने के लिए राजनीतिक दलों में व्यापक सहमति की कोशिश की है। संसद में सभी दलों ने इसके पक्ष में मतदान किया, हालांकि विपक्षी दल इसे लेकर अब भी आशंका उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि काले धन पर रोक लगाने वाली पार्टी ने रियल एस्टेट सेक्टर को इसमें शामिल नहीं किया है। साथ ही पार्टी का यह भी कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद कागजी कार्रवाई और बढ़ जाएगी। लोकसभा में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा,
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ आवर ओन गवर्नमेंट हैज मेड इंपेशेंट प्ली।
आपकी अपनी ही सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने लगातार ये कहा है कि रियल एस्टेट को शामिल किया जाए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। ये वो सेक्टर है जहां काला धन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने उनकी मांग अनसुनी कर दी। क्या ऐसा किसी लॉबी के दबाव में किया गया? अस्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण ये व्यापार में आसानी को खत्म करेगा, मुनाफा घटेगा और इस तरह से ये एक क्रूर कानून होगा।
मोली ने कानून की कमियां गिनाते हुए कहा कि ये एक छोटा सा कदम है, सुधारों की दिशा में ऐसा कोई बड़ा प्रयास नहीं जो बड़े बदलाव ला सके। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में अप्रत्यक्ष करों की दर एक हो जाएगी। देर शाम लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, जीएसटी बिल पास होने पर सभी देशवासियों को बधाई, नया साल, नया कानून, नया भारत। लोकसभा से पास होने के बाद बिल को अब राज्यसभा में भेजा जाएगा, जिसके बाद राज्य विधानसभाओं की बारी आएगी। जीएसटी बिल लागू होने के लिए देश भर की कम से कम आधे विधानसभाओं को इसे पास करना होगा। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि सरकार ने बड़ी बाधा पार कर ली है और अब 1 जुलाई से इसे लागू करने में कोई बड़ी समस्या पेश नहीं आएगी।
तो जैसा कि आपने सुना, जीएसटी विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। क्या अब ये मान लिया जाए कि जो आशंकाएं और चिंताएं जताई जा रही थी इसे लेकर वो खत्म हो चुकी हैं? वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से निखिल रंजन ने यही सवाल पूछा।
देखिए, जनतंत्र में ये मानकर चलना कि सारी आशंकाओं और चिंताओं का समाधान कोई भी सरकार कर सकती है, ये थोड़ा ज्यादा उम्मीद करना होगा। मतभेद और चिंताएं बनी रहनी चाहिए, इससे सरकार पर एक तरह का अंकुश बना रहता है। ये एक बात सामान्य बात हुई, लेकिन जीएसटी को लेकर लोगों की चिंताएं, खासतौर से राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो आप जीएसटी काउंसिल की फंक्शनिंग को देखिए, उसने जिस तरह से काम किया है उसको देखिए। एक एक फैसला, वो छोटा हो बड़ा हो, वो चाहे स्टेट से रिलेटेड हो या सेंटर से या यूनियन टेरिटरी से या कंपनसेशन का मामला हो, सब फैसले आम सहमति से हुए हैं। किसी फैसले पर वोट कराने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी फैसले को बहुमत से पास कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है।
जो 4 बिल पेश किए गए आज, उनसे क्या बदलाव होने जा रहा है? इसको कहा जा रहा है कि ये पास करवाने के दिशा में ये बड़े कदम हैं।
निश्चित रूप से, देखिए, संविधान संशोधन बिल पहले ही पास हो चुका है संसद के दोनों सदनों से। अब ये 4 बिल पास हुए हैं आज लोकसभा से, फिर राज्यसभा से पास होंगे, उसके बाद आधे से अधिक विधानसभाओं से पास होना है, उसके बाद ये कानून जो है, सरकार को उम्मीद है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा। ये जो आज कानून पास हुए हैं, जो देश में बात हो रही थी खासतौर से इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर कि एक देश एक कानून, तो वो 1 जुलाई से अब उम्मीद करनी चाहिए कि लागू हो जाएगा। और एक देश एक टैक्स होने का मतलब है कि टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो हमारी इकोनॉमी का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, या इनफॉर्मल सेक्टर जिसको कहते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आएगा, तो एक टैक्स बॉयंसी भी देखने को मिलेगी और जो व्यापार करने वाले हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन बड़े खुशी का मौका है कि उनके लिए अब मुश्किलें कम हो रही हैं। दूसरा फायदा होगा उपभोक्ता को, जो टैक्स स्लैब बने हैं उनके हिसाब से काफी चीजों के दाम कम हो सकते हैं। कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम है।
तो अब क्या मान लिया जाए कि इसके रास्ते की सब बाधाएं दूर हो गई हैं?
हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि आप जिस तरह से जीएसटी काउंसिल में कामकाज हुआ है, हर राज्य का और हर राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व था और सबकी सहमति से बना है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई रुकावट आने वाली है। 1 जुलाई से ये कानून लागू हो जाएगा, इसमें अब शंका की गुंजाइश बहुत कम हो गई।
एक देश एक जीएसटी विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी पर 350 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने में पिछले 3 दिनों से नाकामी के चलते अधिकारियों पर उंगली उठ रही है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने झंडा स्थापित करने से पहले तकनीकी बातों का ख्याल नहीं रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिछले कई दिनों से यहां नहीं लहरा रहा है। क्या है पूरा मामला, सुनिए रविंदर सिंह रॉबिन की इस रिपोर्ट में।
अटारी वाघा बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा पिछले कुछ दिनों से नहीं फहराया जा रहा। 3 बार तेज हवाओं के कारण फट जाने पर इसे अब 4थी बार बदलने की तैयारी हो रही है। तिरंगे की देखरेख कर रही अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का कहना है कि इसे लगाने से पहले टेक्निकल रिपोर्ट नहीं ली गई और इसे आनन फानन में ही लगा दिया गया था। गौरतलब है कि इस माह के शुरू में ही सीमा पर 360 फीट के पोल पर 120 बाई 80 फीट का तिरंगा फहराया गया था। झंडे के बार बार फट जाने पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन सुरेश महाजन कहते हैं कि हवा के मुताबिक प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं किया गया था।
वो झंडा पिछले 3 दिन से उतरा हुआ है, उसका कारण उसका फट जाना है। वो लगभग 3 झंडे हम पहले बदल चुके हैं और हवा तेज होने के कारण 4था झंडा वो अभी हम लगा नहीं सके। तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि उसका जो पहले इनको टेक्निकली इसकी रिपोर्ट 350 फुट ऊंचे झंडे में वो रिपोर्ट इन्होंने ली नहीं है, क्योंकि ऊपर जाके हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कारण झंडा जो है बार बार फट रहा है।
अटारी वाघा सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए रोज हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं और देश का सबसे ऊंचाई पर लगा झंडा उनकी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, पर पिछले 4 दिनों से झंडा नहीं लगा होने के कारण वे भी मायूस हैं। अटारी के निवासी गुरप्रीत सिंह सोनी कहते हैं,
झंडा हमारे देश की शान है और इसके लिए जब ये इतने यात्री जो डेली के यहाँ पर टूरिस्ट डेली का 40-50 हज़ार टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, तो ये झंडा पहले दूर से दिख रहा है और लोग इसकी चाहत के लिए और वाघा बॉर्डर पर आ रहे हैं। ज़्यादा देर ऐसे खाली रहना बहुत बुरी बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए और लगना चाहिए बार बार ये चीज़ें।
झंडे के रखरखाव पर आपत्ति जतलाते हुए पूर्व कांग्रेसी नेता मनदीप सिंह मन्ना का कहना है कि इस पर जांच होनी चाहिए।
हमारे देश की शान है तिरंगा, पर जो उसमें घपला हुआ है वो सबसे ज्यादा मतलब देश के लिए शर्म की बात है कि लोग ऐसे मामलों में भी पैसे खा जाते हैं। जो आदमी झंडे में से पैसे खा सकता है, देशभक्ति के नाम पे पैसे खा सकता है, वो देश का क्या भला करेंगे ऐसे नेते, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
यूं तो 360 फीट ऊंचे तिरंगे की मेंटेनेंस के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है, लेकिन चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने सरकार से झंडा प्रोजेक्ट की पूरी इंक्वायरी करवाने की मांग की है।
ये थी अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट। और कार्यक्रम में अब अखबार के पन्ने पलटते हैं। मानसी, क्या कह रहे हैं आज के अखबार, हर जगह एक देश एक टैक्स जीएसटी?
जी, जीएसटी की खबरें तो हर 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 अखबार में मुझे दिख रही हैं। लिखा गया है जीएसटी का रास्ता साफ, एक देश एक टैक्स, जुलाई से देश में एक समान वस्तु और सेवा कर लागू हो जाएगा। और अब कुछ खबरें लेते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ तस्वीरों से। तस्वीरें छापी हैं दैनिक भास्कर ने, अखबार ने सांसद रूपा गांगुली और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की तस्वीरें छापी हैं जिनमें वो फुटबॉल खेलती नजर आ रही हैं। लिखा है कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए मिशन 11 मिलियन की शुरुआत की गई है संसद में फुटबॉल खेलकर। इस योजना के तहत 15,000 स्कूलों में 1,10,00,000 बच्चों के फुटबॉल खेलने का मौका दिया जाएगा। अब एक नज़र जनसत्ता पर छपे इरफान के कार्टून पर। इसमें उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो अभियान में भाई बहन को पकड़ने की खबर पर तंज कसा गया है। कल इस पर चर्चा हुई थी। कार्टून बनाया है कि अब भाई बहन भी गले में भाई या बहन होने का तमगा लगाकर कॉलेज के लिए निकलेंगे। अब खबर एक बता दूं आपको हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें मुझे लगता है कि श्रोताओं की दिलचस्पी होगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की भरपाई करने का निर्देश दिया है। आरोप है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने प्रचार में यह पैसा खर्च किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के प्रचार में खर्च किए गए पैसे को लेकर जांच का भी आदेश दिया है।
जनसत्ता की भी यही सबसे बड़ी खबर,
यही यहाँ ये जनसत्ता में भी छपी है। और एक खबर आपको मैं जनसत्ता से ही सुना रही हूँ, इसमें आपको ये सुनने में अच्छा लगेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर राष्ट्रीय कांग्रेस स्वयंसेवक संघ यानी RCSS बनाएंगे।
वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी अखबारों की समीक्षा के लिए। सुरों की माला जब गुथती है तो बनता है गीत। फिल्मी दुनिया के वो गीत कैसे बने जो अमर हो गए।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
कैसे रची रचनाकारों ने धुने और कैसे हुआ गायकी का कमाल। संगीत की मिठास से सराबोर धुनों के बुनने और गुनने की कहानी, बीबीसी हिंदी की विशेष श्रृंखला संग संग गुनगुनाओ।
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।
संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र से सुनिए हर रविवार दिनभर कार्यक्रम में।
तो श्रोताओं आपको याद दिला दें कि इस रविवार इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी आप सुन पाएंगे।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद से लगातार उन फैसलों को पलट रहे हैं जो कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में लिए गए थे। इसी क्रम में राष्ट्रपति ट्रंप ने ओबामा की जलवायु परिवर्तन नीति को कल रद्द कर दिया और इससे पहले ओबामा केयर को रद्द करने के लिए वो विधेयक लाए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। क्या है पूरी कहानी दुनिया जहां में, आज इसी की पड़ताल। दुनिया जहां अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में यूं तो कई मुद्दे उछले, लेकिन जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा विवाद रहा उनमें से एक मुद्दा ओबामा केयर का था। डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार अभियान के दौरान हर मंच पर लगातार इसे बंद करने की वकालत करते रहे।
We're going to get rid of Obamacare, which is a disaster. Real change begins with immediately repealing and replacing Obamacare.
ट्रंप जब राष्ट्रपति बन गए तो चुनावी वादे के तहत ओबामा केयर को बंद करना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल हो गया। ट्रंप ने तैयारी की, ओबामा केयर की जगह नया हेल्थ केयर विधेयक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा से पारित कराने की।
द हाउस बिल एंड्स द ओबामा केयर नाइटमेयर। इट्स गोइंग टू बी टेरिफिक। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। टुडे द हाउस इज वोटिंग टू रिपील एंड रिप्लेस द डिजास्टर नोन एज ओबामा केयर। वी विल सी व्हाट हैपेंस।
मगर यह हो न सका। नया हेल्थ केयर विधेयक पारित न हो पाने के लिए ट्रंप ने डेमोक्रेट सांसदों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ओबामा केयर अपने आप नष्ट हो जाएगा।
I think we have to let Obamacare go its way for a little while and we'll see how things go. I'd love to see it do well, but it can't. I mean, it can't.
पर सवाल यह है कि ट्रंप ने जिस ओबामा केयर को खत्म करने के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनाया वो क्या है। वॉशिंगटन में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सीमा सिरोही से मैंने पूछा कि ओबामा केयर में समस्याएं क्या हैं और ट्रंप इसके पीछे क्यों पड़े हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंश्योरेंस पॉलिसी में ये थी कि इसके प्रीमियम्स बढ़ने लगे, मतलब कि जितना आपको हर साल पैसा देना होता है वो भी बढ़ने लगा। तो आइडिया ये था कि यंग लोग अगर साइन करेंगे तो जो बीमार लोग हैं और जो उम्र वाले लोग हैं उनको फायदा होगा और सब कुछ बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी, जो तीन सबसे बड़ी कंपनीज है यहाँ पे अमेरिका में, उन्होंने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट्स थे वो बहुत कम हो गए, तो वो निकल आए। तो इससे और भी प्रॉब्लम शुरू हुई।
ओबामा केयर तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बराक ओबामा ने पारित कराया था। वैसे इसका नाम है पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर एक्ट। 1960 के बाद अमरीकी लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में ये सबसे बड़ा सुधार था। इसका मकसद क्या था और क्यों ये विवाद का विषय बन गया?
देखिए, मुख्य रूप से तीन कारण है, सैद्धांतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक। ओबामा केयर का बुनियादी उसूल एक तरह से था कि जो अमरीकी सीधे किसी कंपनी से इंश्योरेंस खरीदने की क्षमता रखते हैं, उनका प्रीमियम महंगा करके उन लोगों को सब्सिडी दी जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो सरकारी लिस्ट से इंश्योरेंस खरीदते हैं। और इससे रिपब्लिकन पार्टी ने एक तरह की सोशलिज्म की तरह देखा। दूसरा कि आर्थिक रूप से ये नुकसानदेह है, ये उनका मानना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए उन लोगों के प्रीमियम्स और बढ़ा रही हैं जो सीधा उनसे खरीद रहे थे। इस वजह से नौजवान तबका जो काफी हद तक स्वस्थ है वो अब इसे नहीं खरीदेगा और कंपनियों का नुकसान और बढ़ेगा, कीमत और बढ़ेगी। तीसरा, बरसों से इस बात पर यहाँ सियासी जंग चल रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट हो या सरकारी हो, और रिपब्लिकन्स जैसा कि आप जानते हैं हमेशा सरकार को छोटा रखने के हक में रहे हैं।
नए स्वास्थ्य विधेयक को, जिसे कि ट्रंप पारित कराना चाहते थे, उसमें और ओबामा के समय पारित विधेयक में क्या अंतर है? अगर ये पारित हो जाता तो क्या नफा क्या नुकसान? सीमा सुरोही।
कई अंतर हैं, जैसे ओबामा केयर के अंदर सबसे बड़ा जो उसका एक मुद्दा था, उसमें मेडिकेड और मेडिकेयर जो दो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट चलाती है गरीब लोगों के लिए, उम्र वाले लोगों के लिए, उसको बढ़ा दिया था। इसकी वजह से 20 मिलियन अमेरिकन के पास हेल्थ केयर आ गई थी। तो अब ट्रंप केयर और ये जो रिपब्लिकन हैं वो कह रहे हैं कि उसको वापस ले आएंगे, उसको खत्म कर देंगे, फेज आउट कर देंगे। एक तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो टैक्स क्रेडिट्स मिलते थे जिनके पास हेल्थ केयर नहीं थी उनको सब्सिडीज मिलती थी, वो सब भी खत्म कर देंगे ये लोग। एक और था कि आपको अंडर ओबामा केयर साइन अप करना ही था, मतलब ये अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी तो आपको फाइन पड़ेगा। और एक और चीज थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से कि जो लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं वो भी गुस्सा है इस बात पे, ओबामा केयर के अंदर जो उम्र वाले लोग उनको एक लिमिट थी कि उनसे आप इतना प्रीमियम करेंगे, मतलब 3 गुना आप उनसे प्रीमियम ले सकते हैं कंपेयर टू द यंग पर्सन। अब जो है ट्रंप केयर के अंदर वो इंश्योरेंस कंपनी बुढ़े लोगों से 5 गुना चार्ज कर सकती है। बेसिक बात ये है कि जो लोग गरीब हैं जिनको फायदा हुआ ओबामा केयर के नीचे वो सब हटा दिया जाएगा और ये वापस पूरा इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में आ जाएगा, जो वो चार्ज करना चाहेंगे वही करेंगे जैसा कि पहले होता था।
तो फिलहाल ओबामा केयर बनाम ट्रंप केयर की जंग जारी है और इस लड़ाई की पृष्ठभूमि में है वो अमरीकी जनता जो सेहतमंद जिंदगी की तलाश में है। आज का दुनिया जहां आप सुन रहे थे ओबामा केयर बनाम ट्रंप केयर की कहानी पर। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के हस्ताक्षर के साथ ही ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से विदा होने की औपचारिक शुरुआत हो गई है। अमेरिका के गृहमंत्री रयान जिंक ने स्वीकार किया है कि अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना में बदलाव किए जा सकते हैं। मध्य पूर्व के लिए काम कर रहे अमरीकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि इराकी शहर मूसल पर गठबंधन सेना के हवाई हमले की औपचारिक जाँच की जाएगी। इराक में अधिकारियों का कहना है कि देश की राजधानी बगदाद में एक आत्मघाती ट्रक हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमले में लगभग 45 लोग जख्मी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है, जहां चाहे खेल हो, अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, हर खबर विश्लेषणों के साथ आपके लिए मौजूद है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।